मिला हुआ है, कब चला जाएगा कोई ठीक नहीं। यदि भजन नहीं किया तो मरेंगे, तो पहले क्या बतलाया, भूत बनेंगे, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, शरीर जलेगा, किंतु पानी रहने पर भी पानी नहीं पी सकते। आप लोगों को याद होगा गोकर्ण और धुंधकारी का चरित्र। धुंधकारी, पानी, सरोवर, नदियां सभी हैं, किंतु उनको पानी नहीं मिलता था, दिन रात शरीर जलता था, लकड़ी में आग लगाकर उसे जबरदस्ती पीट करके उस आग से और जलाया करके और गाड़ दिया गया। बड़ा भारी भूत हुआ, गया में पिंड देने से भी उद्धार नहीं हुआ। इसलिए यदि भगवान का भजन नहीं हुआ तो भूत होकर के जन्म लेना पड़ेगा। जो कीर्तन कर रहा है उसको भी नहीं छोड़ेगा, जो सुन रहा है उसको भी नहीं, जो पालन करेगा, जो भगवान का नाम साधन भजन के रूप में लेकर के भजन करेगा, अपने जीवन में उतारेगा, पालन करेगा, वो भूत नहीं होगा। बाकी सब भूत और भूतनी, पिशाच और पिशाची होकर के जन्म ग्रहण करेंगे। यदि इसे छुटकारा मिलेगा तो कीड़े बन करके रहेंगे, कभी पानी के बिना मर जाएंगे। तुम आगे आ जाओ, यहाँ आगे आ जाओ, उनको कीर्तन करने दो, उनको कीर्तन करने दो, तुम आगे आ जाओ ना, तुमको तुम आगे आ जाओ, यहाँ पर बैठो। कीड़े देखते हैं रोज 10 बार जन्म लेते हैं, रोज 10 बार मरते हैं, लाखों बार मरते हैं, पानी के बिना मरते हैं। केंचुआ को देखा ना, केंचुए बरसात में खूब होते हैं और फिर क्या होता है, जहाँ पर 1-2 दिन पानी बंद हो गया बस मर गए, लाखों करोड़ों कीड़े। और तीसरा जन्म आपने क्या बतलाया,
बंदर का,
बंदर का सुख, सुअर का, सुअर जन्म लेकर के अच्छे अच्छे नालियों में बड़े सुगंधित पानी में स्नान करेंगे दिन भर, विवाह की जरूरत नहीं होगी, 20-25-40 सुअरियाँ मिल जाएंगी, एक एक साथ में 16-16, 20-20 बच्चे होंगे, बड़े आराम का जीवन। कुछ दिनों के बाद में काट करके आपको खा जाएंगे। विदेशों में सुअर इसीलिए पलते हैं, यहाँ पर उनका जीवन देखते हैं, क्या ऐसे ही सुंदर जीवन होगा यदि भजन नहीं किया तो, ये समझ रखो। और बदरिया और बंदर बनेंगे तो लकड़ियों पर नचाएंगे, जरूर नाचना होगा, उठाएंगे बैठाएंगे और लोगों को तमाशा दिखाएंगे। ऐसे ये तो 2-4 जन्म बतला है, ऐसे लाखों करोड़ जन्म होंगे यदि इस मनुष्य जीवन में भजन ठीक ठीक सदगुरु धारण करके, गुरु भी कैसा, जो भजन करने वाला, शास्त्रों के तात्पर्य को जानने वाला, हमारी सारी शंकाओं को दूर रहे, दूर कर दे, और इन सब चीज़ों से सचेत करके हमें ठीक ठीक मान अपमान कष्ट जीवन में है इसको सह ले और शुद्ध रूप में भगवान का भजन करें। इन्होंने तो 3 ही का नाम लिया, सूर, तुलसीदास, मीरा का। इसके पहले ध्रुव, प्रहलाद इत्यादि के चरित्र हैं, वाल्मीकि जी का चरित्र है, उल्टा नाम जपत जग जान, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। ध्रुव जी के चरित्र हैं, खाए पिए बिना 6 महीने तक कैसा कठोर तपस्या की, आजकल वो तपस्या संभव नहीं। आजकल तो सारो सहज रूप में भगवान का नाम कीजिए, खाइए पीजिए, कोई बात नहीं है, और महामंत्र हरिनाम यज्ञ में सम्मिलित हो गया, हरिनाम कीर्तन कीजिए। थोड़ा सा यही देखना है कि प्याज लहसुन, मांस मछली, मदिरा इत्यादि का सेवन न किया जाए, पान इत्यादि, तंबाकू के मसाले इत्यादि नहीं, तो उसे तामसिक अहंकार होकर के भजन नहीं होने देगा। इन विधियों का पालन करते हुए भगवान का भजन, किसी को कष्ट मत दो, किसी को भी प्राणी मात्र को कष्ट मत दो, अत्यंत दीनहीन होकर के किसी प्रकार से भगवान का भजन करते चलिए। इसीलिए श्री रामचंद्र जी कभी कभी कृष्ण अपने परिकरों के साथ में जगत में आविर्भूत होते हैं। अभी श्रावण का महीना है, विशेष करके ब्रज में श्रावण का महीना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोर बादलों को देख करके नाचते हैं, कोयल कुहू कुहू करती है मीठी शब्द से, पपी है पी कहाँ करती है, चारों तरफ में हरियाली हो जाती है, ब्रज में चारों तरफ उल्लास छा जाता है। विशेष करके वृंदावन में आज भारत की प्रधान प्रधान रास लीलाएं चारों तरफ में धूम मचा रही हैं, कीर्तनों की रास लीलाओं की। सब जगह घर घर में झूले पड़े होंगे, विशेष करके नंदगांव बरसाना जैसे गांवों में झूले पड़ रहे हैं। और उस समय में कौन राग, मल्ला राग, चल आप एक मल्ला राग सुनाइएगा तो
मल्हार,
हाँ मल्ला राग हो रहा है, रिम झिम फुहारे पड़ रहे हैं। और उसमें ब्रज की बालिकाएं वधू में अपने पीहर में आकर सखियों के साथ में झूले पर बड़े उमंग के साथ में झूल रही होंगी और राधा कृष्ण के झूलन के कीर्तनों को कर रही हूँ। इसी समय में राधिका जी अपनी ससुराल में रो रही हैं, पिताजी माताजी हमें भूल गई, श्रीदाम भैया हमें भूल गया, ब्रज की सभी हमारी सहेलियाँ अपने पीहर में पहुँच गई होंगी, झूले पर झूल रही होंगी, बूरा और घी बूरे उनके दामाद आकर के घरों में खा रहे होंगे। कितना ब्रज में चारों तरफ उल्लास होगा, जमुना में कमल के फूल खिल रहे होंगे, भौरे गुंजार कर रहे होंगे, सारा वातावरण कृष्णमय राधामय हो रहा होगा। राधिका जी घर में रो रही हैं, श्रीदाम भैया हमको भूल गया, हमारे पीहर वाले सभी भूल गए, हमें अभी तक नहीं बुलाया। सावन का महीना अब धीरे धीरे बीत रहा है, थोड़ी देर में श्रीदाम भैया बरसाने से जावट में पहुँचे, देख करके श्रीदाम भैया को श्रीमती जी अत्यंत डकर डकर करके रोने लगे, उनके चरण पकड़ लिए। ऐसा ही ग्रामों में अभी भी देखने को मिलता है, बहनें भाइयों को देख करके या कोई भी पीहर से आ जाए उसको देख करके डकर डकर करके रोने लगते हैं, घर की सारी बातें उन्हें याद आने लगती हैं। एक छलकता हुआ उमंग भरा जब शादी के पहले का जीवन उसको याद आने लगती है, मैया का प्यार, पिताजी का प्यार, सभी ममता इत्यादि याद आने। राधा जी बड़ी डकर डकर करके उन्होंने कि श्री राम भैया भी रोने, आई तुम्हें याद आई, मैं कब से रो रही हूँ, तुम लोग नहीं ले जा रहे, बहन बहुत कुछ काम में फंस गया था इसलिए नहीं आ सका, आज ही तुमको ले चलूँगा। उन्होंने कहा जी हमारी सास से कहो वो यदि जाने दे, बड़ी कठोर है, जाने नहीं देती। किसी प्रकार से श्रीदाम भैया ने काफ़ी मिठाइयाँ काफ़ी उपहार कपड़े लत्ते सब उनकी सास को दिया और वो प्रसन्न हो गई और उनको लेकर के अपने पीहर में आई। पीहर में अभी अपने घर के सामने आते ही फिर उन्होंने आरम्भ कर दिया, मैया और पिताजी घर से आए, आलिंगन पास में उन्हें बद्ध कर लिया, गांव की और भी सब महिलाएं सखियां सभी जुट गईं, उनको लेकर के गईं घर में, सांत्वना दिया, खिलाया पिलाया। दूसरे दिन श्रीमती राधिका जी ललिता विशाखा चित्रा इत्यादि के साथ में, रूपमंजरी इत्यादि के साथ में गह्वर वन में पधारी, वहीं पर झूला लगा हुआ है और कृष्ण को किसी प्रकार से उनको बुलाना होगा, झूल तो झूल रही हैं किंतु कृष्ण के बिना वो झूला झूला नहीं, प्राण तो कृष्ण है सबके, इसलिए चतुराई के साथ में किसी प्रकार से उनको वहाँ पर बुलाया गया। वो आए और वो झूले पर झूल रहे हैं, बल्कि राधिका जी को झूले में झूला रहे हैं। झूला कैसा है जरा एक जरा दृश्य सुनिए तो, हमारे नन्नू मस्जिद थोड़ा सा बोलिए तो, एक इसके बाद में अंत में फिर इनका होगा। ये भी दे दो ना हो तो उन लोगों को
घटा घन घोर मोर पपैया बोलन लगे नाचन लागे मोर ललिता झूला ललिता झूला में होले होले झूले नागी कारे कारे बदरा घिर घिर आ गए जी
एकी कोई घटा हमें कोई घटा किए घन गोरी ललिता झूलावे होले होले झूले नाची
ओ ललिता झूलावे होले होले झूले नाची अरे कोयल कूकत अमवा की डाल पे जी
एकी कोई मोर हमें कोई मोर मचा रहे गोरी ललिता झूलावे होले होले झूले नाची ललिता झूलावे होले होले झूले नाची एकी कोई
Yeah.
वृंदावन बिहारी लाल हमारे गोपाल भट्ट जी गोस्वामी ने हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने गोविंद लीलामृत कृष्ण भावनामृत में प्रभु गोस्वामी ने अपने पद्यों में इसका बहुत ही वर्णन किया है, मार्मिक विवेचन किया है। किसी समय सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी से मिलने के लिए राधा कुंड में गए। वे कुछ लिख रहे थे राधा जी का के सुंदर नामों का और उनके लीलाओं का कुछ वर्णन कर रहे थे, सौंदर्य का वर्णन कर रहे थे। उन्होंने राधा जी की चोटी का वर्णन विषधर नागनी से किया। सनातन गोस्वामी ने कहा कि हमारी प्यारी राधिका जी इतनी सुंदरी हैं, मधुर हैं, उनकी बोली से अमृत टपकता है और आपने उनकी बेणी की तुलना नागिनी से कर दी। उन्होंने कहा जैसे आप इसका सुधार कर दीजिए, इसके बदले में दूसरा कोई एप्रोप्रिएट वर्ड दे दीजिए। सोचने लगे किंतु कोई ऐसा कैसी उपमा ही नहीं मिली। कहिए अच्छा मैं बतलाऊँगा पीछे, और ये कह करके अपने भजन कुटी में लौटने लगे। उसी समय राधा कुंड के उत्तरी तट पर उन्होंने देखा एक कदम्ब वृक्ष है। अभी वो कदम्ब वृक्ष है 5000 वर्ष पुराना। उसी कदम्ब की डार में झूले लगे हुए हैं, बहुत ही अलबेला झूला, और उस पर गांव की लड़कियां, किशोरी लड़कियां उस पर 8-10-15 झूल रही हैं, झूला रही हैं, मल्हार राग गा रही हैं साधारण रूप में। और सनातन गोस्वामी जी जब निकट गए, देखा उसमें जो परम सुंदरी लड़की है, गोरी सी लड़की है, उसको बिठला रखा है और आसपास की लड़कियां उसे ढोटा दे रही हैं, झूला रही हैं, और उसके जो चोटी है, चोटी से कुछ नागिने ऐसे लपक झपक रही हैं जो मानो अभी उसे डस देगी। बोले अरे लाली 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 कहते हुए एकदम दौड़े। जब ही दौड़ करके निकट आए तो देखा न झूला है न लड़कियां हैं, कदम्ब तो है किंतु कदम्ब के पेड़ में झूले नहीं। और वो उस लड़की ने उनके तरफ में देखा, थोड़ी सी मुस्कुरा दी और अंतर ध्यान हो गई। सनातन गोस्वामी ने ये क्या हुआ, तब उन्होंने सोचा जे हमारे भैया की लेखनी को सत्य प्रमाणित करने के लिए राधा जी स्वयं सहेलियों के साथ में आकर के झूले पर झूल रही हैं और ये दिखला रही हैं कि उनकी चोटी नागिन के समान फण तान करके ऐसे ऐसे करती है। इस तरह से वर्णन गोपाल भट्ट जी अपने शालिग्राम को देख करके हाहुताश कर रहे थे। श्रावण का महीना आया, सभी लोग अपने अपने ठाकुर जी को उसमें झूला रहे हैं और मैं शालिग्राम को क्या झूलाऊं, न उनके पैर हैं न उनके हाथ हैं, न हाथों में बंसी है, न राधा जी उनके साथ में हैं, मैं क्या करूं। बड़े दुखी हो रहे थे और चिंतन कर रहे थे। रात में 12 बजे उनको स्वप्न हुआ, तुम देखता है कि हमें हाथ पैर नहीं है, मैं शालिग्राम का शिला हूँ, अब तुम मुझे झुलाओ, जाकर के देखो जो मैं कितना सुंदर हूँ। स्वप्न भंग हुआ और अपने ठाकुर जी को पर्दे हटा करके अपने उस सिंहासन पर देखा, देखा जी अत्यंत अद्भुत राधा रमण जी के रूप में प्रकट हो गए। कोई आए भक्त लोग और उनका श्रृंगार कराया और श्रृंगार करके 16 श्रृंगार मुरली दी गई और उनके वो ब्रज रत्न इत्यादि दिए गए और उनको अतसुंदर झूले पर लेकर के उनको पधरा करके झूलाया गया। गोविंद लीलामृत में तो तरह तरह का इसका वर्णन आया है। जब इस प्रसंग को पढ़ा जाता है तो ऐसा मालूम होता है ये झूले से बढ़ करके और कोई उनका विलास और लीला है ही नहीं है जिसमें राधा और कृष्ण की उमंगें और उनकी इच्छाएं अभिलाषाएं पूर्ण हुई हैं। इसलिए इस लीला का बहुत महत्व है। राधा कृष्ण स्वयं जीवों को आकृष्ट करने के लिए इस जगत में पधारते हैं, अपनी मधुर से मधुर लीलाएं करते हैं। जीवों का कर्तव्य है कि उन मधुर लीलाओं का चिंतन करें, हरि नाम करें, जिससे सारे अनर्थ दूर हो जाएं और वो तैल धारावत अविच्छिन्न गति से हमारे हृदय में उदित होने लगी। ये भजन का तरीका है। जब तक संसार की कामना वासना रहेगी, संसार का ताप रहेगा, मनुष्य अपने खाने पीने में ही मस्त रहेगा या उसी की चिंता में डूबा रहेगा, दुख पाएगा। इसलिए जीवन निर्वाह के लिए किसी प्रकार से भिक्षा से भी जीवन निर्वाह कर लिया जाए किसी प्रकार से, और अपने से उन्नत शुद्ध वैष्णवों के गुरु के अनुगत्य में रह करके भजन किया जाए, और तब धीरे धीरे अनर्थ दूर होंगे और धीरे धीरे ये सब चीज़ें आएंगी। श्री चैतन्य महाप्रभु इसीलिए इस जगत में पधारे थे। विशेष करके ये कीर्तन, संकीर्तन महाप्रभु जी ने जो प्रचार किया, इसमें कोई आयास प्रयास की जरूरत नहीं। महाध्यानी आदमी भी हो, समाधि भी लग गई हो, थोड़ा सा जोर से कीर्तन कर दो, उनका ध्यान भंग हो जाएगा। एक तो ध्यान ही नहीं लगेगा, किंतु कीर्तन ऐसा जबरदस्त है, कीर्तन करो तो भाव में विभोर हो जाओ, अपने आप सुनो भी, कीर्तन करो भी, ध्यान भी करो, इंद्रियां अपने आप वशीभूत हो जाएंगी, जगत का भान नहीं रहेगा। इसलिए कलयुग में सबसे बढ़ करके श्रेष्ठ नाम संकीर्तन यज्ञ है। आप लोग सहज रूप में संसार में रहें, त्यागी रहें, धीरे धीरे इस रूप में आप लोग भजन कीजिए, शुद्ध रूप में भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति, नाम के प्रति, गुरु के प्रति कभी भी अविश्वास और अश्रद्धा ना आए, इस चीज़ को सहेज करके रखें किसी भी प्रकार से। यदि ये ठीक रहेगा तो कभी विचलित हो जाने पर भी वो रास्ते पर आ जाएगा और भगवान का भजन सार्थक हो जाएगा। अभी एक ये अभी भजन सुनाएं, इसके बाद में फिर हम लोग अपनी हरि कथा कहेंगे।